का विषय है साक्षी की खोज। तो साक्षी की खोज अत्यंत रहस्य, रोमांच, परंतु गंभीरता से भरपूर है। इस रहस्य की यात्रा हम सभी साथ साथ करेंगे, क्योंकि यह मनोरंजन नहीं, गंभीरता का विषय है। इसीलिए हम इसे हास्य से शुरू करते हैं, क्योंकि आगे तो इसकी बहुत परत और दर परत हम बड़ी गंभीरता से यात्रा करेंगे कि ये साक्षी क्या है। एक बार एक व्यक्ति अपने मनोचिकित्सक के पास गया और उससे कहा कि आजकल अच्छा नहीं चल रहा है। उसने कहा कि क्या अच्छा नहीं चल रहा है? कहा कि पहले मैं ऑफिस से आता था तो हमारी जो पत्नी थी वो स्लीपर लेकर के भाग करके आती थी हमारे पास, और हमारा डॉगी था वो भी आता था और वो भूखने लगता था। कहा ये तो ठीक है, अब क्या हो रहा है? परंतु अब ये हो रहा है कि डॉगी स्लीपर लेकर के आता है और पत्नी भूखती है। चिकित्सक ने कहा लेकिन काम तो तुम्हारा दोनों हो ही रहा है ना। साक्षी, दृष्टा, समस्त क्रियाएं इस सृष्टि में हमारे शरीर और मन के अधीन है। जो भी क्रियाएं चलती है वो सभी मन के अधीन चलती है। खाना पीना, उठना बैठना, कंप्यूटर, भजन कीर्तन, जो भी कार्य है सभी कार्य मन के कार्य हैं। अकेला इसीलिए मन के कार्य में आप देखेंगे कि अनेक तरह की जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, सुख है, दुख है, क्लांति है, विश्रांति है, अनेक बातें जीवन में मन के द्वारा हो रही है, क्योंकि मन की क्रियाओं के अधीन ही जीवन समस्त कार्य करता है। तो उन दुख और अशांति से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं, तो मन की क्रियाओं के सहयोग से तो हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि समस्त क्रियाएं मन के अधीन है। एक ही क्रिया है, एक ही केंद्र है साक्षी का, जो मन के पार है। सिर्फ और सिर्फ साक्षी का केंद्र मन के पार है, इसीलिए उस केंद्र से ही हम आत्मा तक पहुंच सकते, उस केंद्र से ही हम मन की समस्त क्रियाओं से मुक्त हो सकते। हमारे अंदर देखने और जानने की शुद्धतम क्षमता है, हम देखते और जानते हैं। तो समस्त परिवर्तनशीलता का जो परिधि है वह उस देखने और जानने के अपरिवर्तनशील केंद्र साक्षी से होता है। साक्षी वो केंद्र है जहां से हमें स्वप्न, जागृति, सुषुप्ति, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सभी परिवर्तन दिखाई दे रहे देते हैं। गहरी नींद में आप सो जाते हैं और गहरी सुषुप्ति में चले जाते हैं जहां कुछ भी नहीं होता है, नील हो जाती है सब स्थितियां, वहां कोई भी नहीं रहता। लेकिन जब आप जागते हैं तब आप एक स्टेटमेंट देते हैं कि आज बहुत गहरी नींद आई। वो जो विटनेस है, वो जो अवेयरनेस है, वो जो होश है, वो जो साक्षी का केंद्र है, वह सतत क्षून बना ही रहता है, हरदम बना ही रहता है। उस केंद्र से विचार, स्मृति, कल्पनाएं, भावनाएं, सब परिवर्तनशीलता हमें दिखाई देती है, लेकिन वह केंद्र अक्षुण बना ही रहता, स्थिर, अस्थायित्व लिए हुए, वह कभी नहीं बदलता। तो प्रश्न उठता है कि क्या इस साक्षी को देखा जा सकता। साक्षी का साक्षी होना तो संभव नहीं है, परंतु साक्षी को देखा जा सकता है। राज्यों की विधि व्यवस्था बाबा ने हमें बताया, जो आत्मस्मरण की विधियां दी है, उसके द्वारा हम साक्षी को देख और जान सकते हैं। अष्टावक्र जनक संवाद में अष्टावक्र आत्मा के लिए कहते हैं कि आत्मा स्व पर प्रकाशक है, यानी उसके प्रकाश में संसार प्रकाशित है और उसके प्रकाश से वह स्वयं भी प्रकाशित है। तो ऐसे प्रकाश स्वरूप आत्मा को, वो जो साक्षी दृष्टा का जो केंद्र है, उसको हम देख और जान सकते हैं। परंतु यह सहज भी है और कठिन भी है। सहज इसलिए है कि मैं मुझको नहीं जानूंगा तो और किसे जानूंगा। मैं मेरे सबसे नजदीक हूं, तिल जितनी भी जगह नहीं है मेरे पास फर्क होने में। दूसरों को जानना तो फिर भी कठिन है, दूसरा हमसे दूर है। कितना भी जान लेंगे दूसरों को, फिर भी नहीं जान पाएंगे। निश्चित रूप से एक एक्वेंटेंस, एक परिचय हमें उससे प्राप्त कर सकते हैं उसका। लेकिन मैं तो मेरे सबसे नजदीक हूं, मैं तो मुझे जितना जान सकता हूं, मुझे तो यात्रा भी नहीं करनी है कहीं, इसलिए मैं मुझे तो अच्छी तरह जान सकता हूं। लेकिन कठिनाई क्या है? कठिनाई है कि मैं इस सृष्टि में सबको देखता और जानता हूं, लेकिन मैं इस सृष्टि में सबको देखता और जानता हूं, सबको माना सब कुछ अंदर और बाहर, लेकिन जो सबको देखता और जानता है उसको नहीं जानते। मेरा ध्यान इस सृष्टि में सब तरफ है, लेकिन ध्यान देने वाले पर ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकाश में संसार प्रकाशित है, वो किस अंधेरे में छुपा हुआ है, जिसके प्रकाश में सारा जगत आलोकित है? यह रहस्य है। यह जो केंद्र है साक्षी का, लगता विरोधाभासी है कि यह कठिन भी है और सरल भी है, लेकिन सरल है और कठिन नहीं है, और कठिन कहां कहां है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साक्षी दृष्टा जी, चिमटा खुद को चिमटा नहीं पकड़ सकता है, चिमटे से आप सब चीज को पकड़ सकते हैं, हाथ से सबको पकड़ सकते हैं, हाथ से हाथ को नहीं पकड़ सकते। ये साक्षी भी, डॉक्टर साहब देखो बोले, साक्षी भी वैसा ही है। तो ठीक है, अब हम थोड़ी थोड़ी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चिमटे से चिमटे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साक्षी दृष्टा, दृश्य, दर्शन और दर्शक, ये पांच स्थितियां हैं। साक्षी दृष्टा, दृश्य, दर्शन और दर्शक, ये पांच स्थितियां हैं। उदाहरण से देखते हैं, हम यहां सभी बैठे हैं, मेरे लिए आप सभी दृश्य हैं, मैं दृष्टा हूं, और देखने की क्रिया चल रही है हमारे और आपके बीच, आंखों के द्वारा संवाद से देखने और जानने की क्रिया चल रही है, यह दर्शन की क्रिया है। इसमें दृष्टा और दर्शक के फर्क को समझते हैं। मान लो आप लोग बैठे हैं, किसी ने मेरे लिए अपमानजनक अशोभन शब्द बोले, अशोभन व्यवहार किया, और मैंने तत्क्षण प्रतिक्रिया की, मैंने भी उसे प्रतिक्रिया में अशोभन शब्द का प्रयोग किया। अब यहां देखते हैं वस्तु स्थिति क्या है। अभी तक तो मैं दृष्टा था, आप दृश्य थे, और दर्शन की स्थिति चल रही थी, लेकिन दृष्टा दृश्य के साथ जुड़ करके एक रूप हो जाता है और दर्शक की अवस्था को धारण कर लेता है, एक रूप अर्थात तादात्म्य की अवस्था में आ जाता है। दृष्टा दृश्य के साथ जुड़ करके एक रूपता की अवस्था में तादात्म्य स्थापित कर लेता है और वह दर्शक की अवस्था में बदल जाता है। अब वह दर्शक आवरण तो दृष्टा का ओढ़े हुए रहता है, लेकिन स्थिति दर्शक की बनी रहती है। आवरण दृष्टा का ओढ़े रहता है, का अर्थ है कि यदि आप एक अंधेरे कमरे में, धूप अंधेरे कमरे में बैठे हैं, आपको हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा, उस समय आपको कोई दूर से बोले कि तुम हो, तो आप कहेंगे हां मैं हूं। यह उसकी एग्जिस्टेंशियल बोध है। लेकिन सेकेंड में यदि वहां से कोई गाली का शब्द आता है उसके पास, तो वो तत्क्षण बोलता है, प्रतिक्रिया देता है उस पर, और वो भी उल्टा बोलता है। वह जो उस समय एग्जिस्टेंशियल दृष्टा की स्थिति में था, अब वह तत्क्षण दर्शक में बदल गया है, एक सेकेंड में। और आवरण तो ओढ़े हुए अपने एग्जिस्टेंस का ही कि मैं हूं, लेकिन अब वह प्रतिक्रिया दूसरा चीज दे रहा है। यहां भी स्थिति हमारी यही है, प्रतिक्रिया हम जब दे रहे हैं, अब हम दृष्टा की स्थिति में नहीं, दर्शक की अवस्था में है, चूंकि दृश्य के साथ जुड़ गए हैं और उनके तादात्म्य स्थापित कर लिया उसके साथ और उसका रूप धारण कर लिया। यह है दृष्टा और दर्शक की स्थिति, दृश्य के साथ जुड़ करके। एक दूसरी घटना देखते हैं, क्रिकेट का मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान, विशेष इंडिया पाकिस्तान का मैच, दृश्य चल रहा है, दृष्टा है, वो दृष्टा प्रतिपल दर्शक में बदलता जा रहा है, प्रतिपल दर्शक में बदले हुए रहता है। अरे अरे उसने मिडिल स्टंप पर एक गेंद क्यों फेंका, और देखो तो कितना जोरदार ड्राइव किया, और लॉन्ग लेग पर, अरे 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 कैच हो गया। प्रतिक्रिया, प्रतिपल प्रतिक्रिया हो रही है। तो प्रतिक्रिया दर्शक की स्थिति है। एक आप लोगों ने कहानी भी सुना होगा, सचिन भाई ने सुनाया हो, ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम हम सभी ने सुना होगा, बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक और समाज सेवी थे, विद्वान थे। अपने संस्मरण में उन्होंने लिखा कहीं कि एक बार वो एक थिएटर में निमंत्रित थे, आमंत्रित थे, वहाँ गए थिएटर में नाटक देखने के लिए। बंगाल में आज से 40-42 साल पहले जहाँ हम रहते थे ना, वहाँ चारों तरफ टॉकीज बहुत कम, थिएटर्स बहुत थे चारों तरफ, मंचन लोग देखने जाते थे, खूब भरा रहता था थिएटर्स। तो वो देखने गए, फर्स्ट क्लास उसमें आगे ही होता है, थिएटर में फर्स्ट क्लास आगे होता है। बैठे थे, दृश्य चल रहा था, एक महिला है एक सुनसान जंगल से गुजर रही है, एक लोग है, एक दो लोग है जो उसे परेशान कर रहे हैं। स्थिति असहनीय हो गई। ईश्वरचंद विद्यासागर उठे, स्टेज पर गए और जूते से उसकी पिटाई शुरू कर दी। उनके संस्मरण में लिखा उन्होंने कि वो भूल गए कि वो कौन है। यह स्थिति दृश्य के साथ जुड़ करके दृष्टा की, दर्शक की हो जाती है। तो दृष्टा दृश्य के साथ जुड़ करके दर्शक की अवस्था में चला जाता है, और यह स्थिति हमारी प्रत्येक दिन के कार्य व्यवहार में बनी ही रहती है कि हम दृष्टा नहीं, दर्शक की अवस्था में बने रहते हैं। आप देखो सारे दिन में 14 घंटे 18 घंटे हम जागृत रहते हैं, और जागृत रहते हैं उसमें आधा घंटा एक घंटा सवेरे शाम समझो आत्मस्मरण की का अभ्यास करते हैं, अपने को आत्मा समझते, कहते मैं आत्मा हूँ। लेकिन 14 घंटा हम किसे मैं समझ के व्यवहार करते हैं, उस समय हम दर्शक की स्थिति में बने रहते हैं। यह दर्शक ही झूठा मैं है। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें अवलोकनकर्ता यानी डिटैच ऑब्जर्वर की जरूरत है। साक्षी दृष्टा में स्थित होने के लिए, ये जो साक्षी दृष्टा की स्थिति है, इसमें स्थित होने के लिए हमें डिटैच ऑब्जर्वर अवलोकनकर्ता की स्थिति धारण करनी है। लेकिन अवलोकनकर्ता की स्थिति हमारी नहीं होती है, हमारी विचारकर्ता की स्थिति हमेशा बनी रहती है, अवलोकनकर्ता की स्थिति नहीं बनी रहती है। इसको भी हम समझ लें कि साक्षी होकर के देखने के लिए यानी दर्शक से दृष्टा की स्थिति की तरफ यात्रा करते हैं, तो उस दृष्टा की स्थिति की तरफ स्थित होने के लिए हमें अवलोकनकर्ता की स्थिति में जाना है। और अवलोकनकर्ता कौन हो सकता है? जो झूठे मैं से मुक्त हो। यदि आप झूठे मैं से मुक्त नहीं हैं और स्मृति से मुक्त नहीं है, तो डिटैच होकर के ऑब्जर्व यानी अवलोकन नहीं कर सकते और आप हमेशा विचारकर्ता की स्थिति में बने रहेंगे। हमारे सामान्य जीवन में आप गहराई से देखें, विचार करें, तो आपको दिखाई देगा कि हम विचारकर्ता की स्थिति में होते, अवलोकनकर्ता की स्थिति में कभी नहीं होते, निरीक्षक के पद पर कभी भी हम आसीन नहीं होते। एक उदाहरण से देखते हैं इसको कि झूठे मैं से मुक्त होकर के हम कैसे देखें। सामान्यतया हम झूठे मैं से मुक्त होकर के चीजों को देख ही नहीं पाते, दृष्टा हो ही नहीं सकते। एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है, क्रोध की स्थिति, उसे एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि तुमने क्रोध क्यों किया, तुम क्रोध क्यों कर रहे हो। वो क्या स्टेटमेंट देता है? वो कहता है कि क्रोध मैंने नहीं किया, क्रोध तो इसके कारण, इसके बुरे व्यवहार के कारण हमारे से हुआ, मैंने क्रोध नहीं किया, क्रोध मुझसे हुआ और ये मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं तो निर्क्रोधी हूं, मैं तो अच्छा व्यक्ति ही हूं, लेकिन ये जो भी कुछ हुआ मेरे साथ ये इसके कारण हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं है। यानी मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने किया ही नहीं, इसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। इसलिए आप देखेंगे जिंदगी भर लोग बुरे करते रहते हैं और अच्छे बने रहते हैं, और यही समस्या है कि वो बुराई जीवन से नहीं जाती है क्योंकि महसूसता ही नहीं है वहां। हमेशा हम हमारी कमजोरी और बुराई के कारण ढूंढ लेते हैं, फटाफट लोग कहते हैं पूछो क्यों, और उत्तर हमारे पास सवेरे से शाम तक बना ही हुआ है। सवेरे से शाम तक हमारी ये जो झूठे मैं की स्थिति है, इसको यदि विचार करें कि एक व्यक्ति, हम हरेक अपने अंदर देखें इस बात को, एक व्यक्ति अंदर महसूस करे, इस दृष्टि को देखे और उत्तर दे कि क्या अंदर क्रोध उबल रहा है, अग्नि ज्वाला जल रही है, और ऊपर वो बहुत शांति से प्रेम से बातचीत कर रहा है। पाखंडी चेतना की अलग बात है, सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूं। वो अंदर सब कुछ आग जल रही हो और ऊपर सब कुछ शांत हो, या अंदर सब कुछ विराट शांति सन्नाटा हो, शांति की झील बनी हुई है और ऊपर सब कुछ उथल पुथल आग ही आग दिखाई दे रहा है, ऐसा हो सकता है? ये दोनों ही स्थितियां हो नहीं सकती। का अर्थ है कि विचारकर्ता और विचार दोनों दो चीज नहीं है, लेकिन झूठा मैं, ईगो, अहंकार अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए स्वयं को दो खंडों में बांट लेता है और एक खंडे में अपने को सेफ कर लेता है और दूसरे खंड की जिम्मेदारी दूसरे पर दे देता है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि क्रोध के विचार और क्रोध दो चीज नहीं है, एक ही है, और इसे हम कहेंगे क्रोधी, इंबॉडीमेंट ऑफ एंगर, क्रोधी कहेंगे उसको। तो वास्तव में हमारी स्थिति क्रोधी की रहती है, और यदि साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठ करके हम इस स्थिति को देख सके तो हम इस बुराई के साथ नहीं रह सकते। जैसे हम आग के साथ नहीं रह सकते, आग में हाथ डालते हैं हम हटा लेते हैं हाथ, ऐसे ही यदि हम ये महसूस करें कि रियली मैं पाखंडी हूं, रियली मैं क्रोधी हूं, यदि वो दिखाई दे, और एक साथ यदि आपको वो बहुत सारा कुछ जो अंदर है वो सब एक साथ दिखाई दे कि मैं ये भी हूं और मैं ये भी हूं और मैं ये भी हूं, तो इस पीड़ापूर्ण स्थिति में कोई भी नहीं रह सकता, उसे बदलना ही होगा, उसे रूपांतरित होना ही होगा। लेकिन अभी हमारी वो स्थिति बनती नहीं है, अभी हमारी स्थिति होती है क्रोध आया लेकिन इसके कारण आया और ये परिस्थिति थी और ये समस्या थी इसके कारण। तो विचारकर्ता यदि झूठे विचार से मुक्त हो तब वह अवलोकनकर्ता की स्थिति में प्रवेश करता है, और तब जब हम निरीक्षण करते हैं तब हम साक्षी दृष्टा की स्थिति की ओर यात्रा कर सकते हैं। इसलिए साक्षी दृष्टा का अर्थ है, साक्षी का अर्थ है, साक्षी के लक्षण, साक्षी का अर्थ, साक्षी की विधि, इस सब का एक क्राइटेरिया है, एक शर्त है। यदि हम इस शर्त को स्वीकार करते हैं तब हम साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो सकते हैं। इस शर्त को स्वीकारते हैं तो हम साक्षी दृष्टा का अभ्यास भी कर सकते हैं। वो शर्त है तटस्थ मौन निरीक्षक, वो ऑब्जर्वर जो तटस्थ है, मौन है, पसंद नापसंद से मुक्त है, पक्ष और विपक्ष से मुक्त है, प्रयोजन उद्देश्य रहित है, निर्णय और चुनाव से मुक्त है, च्वाइसलेस अवेयरनेस बोलते हैं उसे, और परिग्रह से मुक्त है, और सेंसरशिप प्रतिबंध से मुक्त है, स्वतंत्र है, तभी वह साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठ सकता है। इस सब पर हम क्रम से आगे चर्चा करेंगे। तो साक्षी दृष्टा का अर्थ है, दृष्टा का अर्थ है दृश्य के प्रति साक्षी, स्वयं के प्रति जागृत। इसको हम एक और दृष्टा की इस स्थिति में देखते हैं कि मैं चल रहा था, उसमें दृश्य बाहर थे और एक दृश्य अंदर था, अंदर भी हलन चलन हो रही थी, बहुत हलन चलन हो रही थी अंदर, बाहर तो वो दृश्य चल रहा था, अंदर एक दृश्य चल रहा था। अंदर के दृश्य को भी जब जो देख रहा हो और बाहर के दृश्य को देख रहा हो तो वो दृष्टा की स्थिति है। इसलिए दृष्टा का अर्थ है दृश्य के प्रति साक्षी, स्वयं के प्रति जागृत। अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है, उस हलन चलन को, उस उठापटक को भी वो देख रहा है और बाहर के दृश्य को भी देख रहा है, तब वह दृष्टा की स्थिति में है। तो साक्षी दृष्टा की इस क्राइटेरिया को यदि हम पालन करते हैं तटस्थ मौन निरीक्षक के पद पर आसीन होकर के, सभी पक्ष और विपक्ष से मुक्त होकर के, निर्णय और चुनाव से मुक्त होकर के, कोई भी सेंसरशिप से अपने को हटा करके, स्वतंत्रता से यदि हम निरीक्षण करते हैं बिना किसी तुलना और विश्लेषण के, तभी हम साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठ सकते हैं। तो पहली स्थिति आती है निरीक्षण की, निरीक्षक के पद पर आसीन होना, डिटैच होकर के चीजों को देखना। सामान्यतया निरीक्षण अपने अंदर चल रहे उन तीव्र भावावेग और विचारों का निरीक्षण कहा जाता है, बाहर के निरीक्षण की बात नहीं है, अपने अंदर के निरीक्षण की बात है। तो शांत होकर के जब आप अपने अंदर निरीक्षण करेंगे, अपने अंदर देखेंगे उस तीव्र भावावेगों को, उन विचारों को, उस बदलती हुई प्रतिक्रियाओं को, तो आपको दिखाई देगा कि मन छेरे गए मधुमक्खी के छत्ते की तरह भिन्न 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 करता रहता है। ये भिन्न भिन्न में एक संदेश भी है। भिन्न भिन्न का अर्थ है कि यदि आपको अंदर ये दिखाई दे कि ये भी भिन्न है मुझसे, ये भी भिन्न है मुझसे, ये भी भिन्न है मुझसे, तो आप साक्षी हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशन की स्थिति सफल हो जाएगी आपकी। लेकिन भिन्न भिन्न का अर्थ है कि बहुत तरह के विचार सवेरे से शाम तक हमारे अंदर चलते ही रहते हैं और ये इतने तीव्रता से चलते रहते हैं कि लगता है कि मन बीमार पड़ गया है। इसे देखने के लिए हमारे अंदर मन को शांत झील की तरह, धूल रहित दर्पण की तरह होना चाहिए, तभी हम उसे देख सकते हैं। अभी तो ऐसे लगता है कि वो इतनी तीव्रता से चल रहा है कि वह बीमार पड़ गया और इस बीमार मन को इलाज की जरूरत है। और इसका इलाज क्या है, शांत होकर के एक कागज का टुकड़ा लें और अकेले बैठ जाएं और जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है उसको आप कागज पर राइट डाउन करना शुरू कर दें। सोचे नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जो भी चल रहा है, कोई देख नहीं रहा है आपको, लेकिन 10 मिनट आधे घंटे लिखने के बाद यदि आप उसे पढ़ेंगे, यदि आप साक्षियों के किसी को कहेंगे कि ये पढ़ो और ये क्या है और किस व्यक्ति का स्टेटमेंट है, तो वो तो कहेगा निश्चित ही ये किसी पागल सरफिरे व्यक्ति का स्टेटमेंट है, क्योंकि वहां विचारों में कोई भी तालमेल नहीं है, कोई भी संयोजन नहीं है, कोई भी हार्मनी नहीं है, एकता नहीं है। और वस्तु स्थिति है हमारी, यदि हम उसे देखें और यदि हम शांत होकर के निरीक्षण करते हैं अपना, तो बड़ा घबराने वाला लगता है। ये बहुत ही भयभीत स्थिति पैदा होती है कि ये सब कुछ अनर्गल असंगत सवेरे से शाम तक ये इतना भय पैदा करता है कि जितना जंगली जानवर भी पैदा नहीं करते, इतनी भयंकर स्थिति बन जाती है। और हम स्थिति को शट डाउन कर देते हैं, तुरंत बंद कर देते हैं। और शट डाउन कर देते का अर्थ है कि हम उसे बंद करके अपने को फिर से किसी कार्य में बिजी कर लेते हैं और उलझा लेते हैं। ये दोनों दो चीज है। सामान्यतया तो हम उलझा लेते हैं, बहुत बार हम बिजी कर लेते हैं। हालांकि दोनों ही इससे मुक्ति के उपाय तो नहीं है, लेकिन टेम्पररी हमें रिलीफ जरूर मिलता है और हम चीजों को भुला देते हैं। और आज हम देखते हैं, पहले हम मधुबन में होते थे तो शुरू शुरू में तो हमारे पास मनोरंजन के कोई भी साधन नहीं होते थे। रेडियो भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता, तो घड़ी भी नहीं होती थी। हम घड़ी भी, ओम शांति भवन है ना, उसके आगे घड़ी लगा होता तो वो देख करके, तो हम कई बार उठते थे तो कई बार हमें ख्याल आता था, वहां से ही हमें वो इतना अभ्यास कर लिया कि कितने बजे है, तो ये ओम शांति भवन वाली घड़ी हमको वहीं कमरे में बिस्तर पर दिखाई देती थी कितने बजे। एक बार तो मैं उठ के भाग के आया कि सही दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, तो वो दिखाई देता था। तो कहने का अर्थ था कि घड़ी भी नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी शुरू में मधुबन में। वो तो किसी दिन हम फिर अनुभव सुनाएंगे, 40 साल पहले का मधुबन क्या था। तो कोई भी साधन नहीं होते थे, रेडियो भी नहीं होता था, तो सवेरे से शाम तक महीना साल गुजर जाता था। तो फिर रहते रहते ना एक ही तरह के, तो फिर इतने समय के बाद कभी हम बोर हो जाते थे, कहते थे कि अब कहीं बाहर जाना चाहिए। और यहाँ तो तीन तीन चार चार बरस दादी छुट्टी नहीं देती थी, तीन चार बरस छुट्टी नहीं देती थी। एक बार तो मैं एक साल के बाद आबू रोड स्टेशन पर गया तो मुझे लगा जैसे कि मैं कहीं न्यूयॉर्क में आ गया, कहीं नहीं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। यहाँ सब कुछ अद्भुत आश्चर्य। तो इतना मोनोटोनस स्थिति मधुबन की हो जाती थी हमारी, मोनोटोनस। अभी कोई भी बोर नहीं है, मैं उल्टा देख रहा हूँ, कोई भी बोर नहीं है, क्योंकि बोर होने का कोई मौका ही हम नहीं देते हैं। हम उलझाए रखते सवेरे शाम तक, लोग इसमें उसमें, एक मोबाइल ही इतना बड़ा अभी साधन है, पूरी दुनिया पूरा उलझाए हुए है मनुष्य को। हाँ, अभी न्यूयॉर्क आ गया, अभी लंदन कैसे चल रहा है देख लो एक मिनट में। तो सवेरे से शाम तक हम अपने को उलझाए रखते, और अभी बहुत बड़ा साधन मिल गया है तो हम अपना इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण हम सही ढंग से कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए क्योंकि थोड़ी देर योग में भी बैठो, थोड़ी देर योग में बैठने के बाद हम फिर उठ जाते हैं। अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत शांति आ रही है, फिर हम उठ के क्यों चले जाते हैं, ये भी एक सोचने वाली लगता है थोड़ी देर के लिए। वो भी मोनोटोनस हो जाता है हमारे लिए, कहते हैं इसको भी अब चेंज करो, अब ये भी बोर कर रहा है, ये भी शांति से ज्यादा बोर कर रहा है, उठो यहां से। तो ये स्थिति अंदर की हमारी है और बहुत घबराने वाली है। तो 24 घंटा ही हम या तो किसी चीज में उलझा लेते हैं, या तो मनोरंजन में उलझा लेते हैं, दुनिया में तो लोग नशे में और हजार चीजों में उलझा लेते हैं, या हम रॉयल्टी से दूसरी चीजों में अपने को उलझा लेते हैं। यदि शांति से हम निरीक्षण करें तो वो जंगली जानवर के साथ तो लोग रह भी लेते हैं, लेकिन ये जो अंदर इतना विभत्स और भयावह है, इसके साथ हम थोड़ी देर भी नहीं रह पाते हैं। अभी राजयोग में हमारी स्थिति काफी बेहतर है, और सबकी बाबा कहते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार अपनी अपनी है, अलग अलग है। तो लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है हमारे अंदर, तो यदि हम उसका निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब हमें पता चलता है कि इस भयावह स्थिति से, इस दुश्मन से, इस शत्रु से छुटकारा कैसे पाएं। क्योंकि शत्रु को जब तक आप जानेंगे नहीं अच्छी तरह, देखेंगे नहीं अच्छी तरह, तो उसे मुक्त कैसे होंगे। इसलिए शत्रु को जानने के लिए, मुक्त होने के लिए, जानना, देखना, पहचानना, उसकी कमी कमजोरी सबको देखना जरूरी है। आप अपने अंदर जब शांत होकर के अपना निरीक्षण करेंगे, तब पता चलेगा कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाएं और अपने आप को देखें अंदर से कि जो कुछ भी चल रहा है उसको हम चलने देंगे, भयभीत नहीं होंगे, उसे हम जो है जैसा है जो कुछ भी है उसे हम देखेंगे, उसे आंख नहीं बंद करेंगे, दो दो आंखें कर लेंगे, दो दो हाथ आमने सामने हो जाए, भय की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा है तो है, क्या क्या है देखेंगे। धीरे धीरे जैसे ही आप चीजों को देखना और जानना प्रारंभ कर देते हैं, धीरे धीरे आपको लगता है कि मैं उस चीज से अलग अपने को करता जा रहा हूं, क्योंकि उस चीज के प्रति स्वीकार का भाव समस्त परिवर्तन का आधार बन जाता है। और धीरे धीरे अब वो चीजें हमें भयभीत नहीं करती। एक बार निरीक्षण किया, दूसरी बार हम तथ्य निरीक्षण की सीट पर बैठ जाते हैं, निरीक्षक की सीट पर, और निरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन की। और यदि यह फ्रिक्वेंट होना शुरू हो जाता है तब तो हम काफी हद तक इन चीजों से, अपने अंदर इन सब बुराइयों से मुक्त होना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि अब हम डरते ही नहीं है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है और बोर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर यही पक्ष थोड़े है, अंदर का दूसरा पक्ष भी है, शांति, आनंद, प्रेम, प्रकाश और नूर का। क्योंकि दृष्टा अपने दृश्य को तो देख लिया, लेकिन दृष्टा को प्रश्न उठता है कि ये मैं हूं कौन, सब कुछ मुझे दिखाई तो देता है, सारा दृश्य भी दिखाई दे रहा है, बाहर का दृश्य भी दिखाई दे रहा है, अंदर का दृश्य भी दिखाई दे रहा है, तो वो दर्शक, वो जो दृष्टा है वो कौन है। यदि वो सूक्ष्मता से अपने को ऑब्जर्व करे तो वहां पता चलेगा कि वहां नूर है, नाद है, वहां आनंद की तरंगे हैं, वहां ज्योतिर्मय प्रकाश की किरणें हैं, वहां प्रेम की तरंगे हैं, वहां शांति की तरंगे हैं। तब उसे दिखाई देगा कि वह ये है, वह दृष्टा है, और वह दृष्टा कौन है, वह आत्मस्मरण, आत्मा की स्थिति है। अब यह साक्षी दृष्टा की स्थिति है, और इस साक्षी दृष्टा की स्थिति में जब वो निरीक्षण करता है तो अंदर अब वो भय के जंगली जानवर नहीं, आनंद का नाद और वह नूर, वह रोशनी भी वहां उसे दिखाई देता है, जो बहुत कीमती है, और वो चीजें तो बहुत छोटी लगती थी। तो निरीक्षक के पद पर आसीन होकर के जब हम बैठ करके अंतरावलोकन करते हैं तो हमें अपने आत्मस्मरण की स्थिति का भी बोध होता है कि वो मैं आनंद स्वरूप, वो मैं प्रेम स्वरूप, वो मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। तो साक्षी पर हम सह यात्रा कर रहे हैं, साथ 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 सब यात्रा कर रहे हैं साक्षी दृष्टा की स्थिति की, क्योंकि हम सभी सहयात्री हैं। शांति और गंभीरता से, चूंकि ये विषय है, मनोरंजन का विषय नहीं है। जय कृष्णमूर्ति हमेशा कहते थे आध्यात्म मनोरंजन की चीज नहीं है। इसको हम जितनी गंभीरता से, शालीनता से समझते हैं, सही ढंग से सुनना, मुक्त होना, यह श्रावक की स्थिति है। यदि हम सही ढंग से सुनते हैं तो सुनते समय ही मुक्त हो जाते हैं। यदि हम सही ढंग से नहीं सुनते हैं तो फिर हमें करना भी पड़ता है, अभ्यास भी करना पड़ता है, तीसरी स्थिति तो अलग है। तो शायद मुझे सचिन भाई ने 2 दिन समय दिया है, तो कल हम इस पर, जो तटस्थता क्या है, इसके बाद स्वतंत्रता क्या है, पक्षपात मुक्त निरीक्षण क्या है, भयमुक्त निरीक्षण क्या है, निर्णय और चुनाव से मुक्त निरीक्षण की स्थिति क्या है, हमारी स्वतंत्रता से निरीक्षण की क्या स्थिति, सेंसरशिप से मुक्त होकर के निरीक्षण कैसे करेंगे, ये सब निरीक्षण की स्थितियाँ, कंडीशंस हैं, शर्त है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो ही हम साक्षी दृष्टा हो सकते हैं। जिसे साक्षी का भाव पुष्ट हो, का अर्थ है एक तो आत्मस्मरण की बात है, मतलब अच्छा स्थूल अभ्यास हो। स्थूल अभ्यास में पता है क्या है, एक अभ्यास जो हमारे अनुभव में शुरू से रहा, 86-87 की बात है, जिसको बाबा ने कहा कि इस वर्ष को साधारण वर्ष की तरह नहीं लेना, और इस वर्ष का पुरुषार्थ आपके 50 वर्ष के पुरुषार्थ में ऐड हो जाएगा। तो उस बात को हम लोग ने बहुत गंभीरता से लिया था और पुरुषार्थ करते थे। तो धीरे धीरे हमारे किचन में हम किसी न किसी को बिठा देते थे, एक व्यक्ति काम नहीं करता था किचन में, एक व्यक्ति बैठा रहता था योग में और बाकी सारे लोग किचन में काम कर रहे होते थे। शुरू शुरू की बात, वो साक्षी था लेकिन देखने वाला इस प्रेरणा को लेता था कि काम करते समय सूरज भाई कहते थे कि देखो एक एक पकौड़ा बाबा की याद में डालो, तो सबकी ये रेस चलती थी। आज इसका 8 घंटा हो गया, इसका 7 घंटा हो गया, उसका 6 घंटा हो गया, अरे मेरा तो 6 घंटा ही हुआ, 8 घंटा हुआ नहीं। तो हम रात के ट्रेनिंग वाला जो अभी जो सोलर लगा हुआ है ना, वहाँ हम घूमते रहते थे 2 घंटा जग करके, रात के 12 बजे तक भी वह 8 को पूरा करके फिर सोने जाते थे। तो इस तरह का पुरुषार्थ चलता रहता था, जिसमें प्रैक्टिकल एक चीज था कि हर एक घंटे जो हम स्मरण की बात करते ना, हर एक घंटे मैं उन लोगों को अभ्यास भी कराया, बहुत किचन में भी अभ्यास कराया कि हर एक घंटे को आधे आधे घंटे या 15-15 मिनट में बांट दो। क्योंकि यदि आप एक घंटे को 1 घंटे में बांटते हैं तो 1 घंटा भूल जाएगा और तब याद आएगा कि अरे 1 घंटा बीत गया। यदि आप 15 मिनट में बांटते हैं तो 15 मिनट यदि भूल गया तो दूसरे 15 मिनट को मार्जिन मिली हुई है कि वो उसको याद कर सकते हैं। तो अलग अलग भिन्न भिन्न स्थितियों में, जैसे माइंडफुल वॉकिंग की बात हो रही थी तो जिसमें बाबा ने एक बार कहा था कि अशरीरी अवस्था का अनुभव, शरीर से डिटैच अवस्था का अनुभव चलते फिरते भी कर सकते हैं, उस बिंदु रूप और बीज रूप अवस्था का, बैठ के कर सकते हैं इतना ही नहीं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो मेरा तो बहुत अभ्यास रहा चलते फिरते कि कैसे शरीर चल रहा है और मैं अंदर स्थिर बैठा हूँ, शरीर चल रहा है और हम यहाँ से उस पोस्ट तक जाते थे और इस स्मरण को एक एक स्थिति को ध्यान में रखते थे कि मुझ पर किरणें आ रही है, और वहां से वहां तक जाते हुए भूल जाता था, भूल गया तो फिर ये याद नहीं करते थे कि अरे अरे भूल गया है, देखो 10 मिनट सोचा था, यहां से यहां तक सोचा था, याद नहीं आया। लेकिन नहीं, इतना अभ्यास कर लिया था कि जैसे ही भूला तत्क्षण वहीं से शुरू कर देते थे, ये रिपेंट रिपेंट और इसका विश्लेषण करना छोड़ देते थे, ये नहीं करते थे। तो आप प्रैक्टिकल आज अभ्यास करें, हर एक अपने को 1 घंटे को 15 मिनट में ऐसे शॉर्ट में आधे घंटे में बांट के देखे कि वो इस स्थिति में कितनी देर रहता है। यदि वो प्रारंभ करेगा तो प्रारंभ करते ही थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि वो भूल भाल गया, और जब याद आए तो वहीं से शुरू करे, नहीं कि ये सोचना शुरू करे कि अरे अरे कैसे हो गया, ये हो गया, क्या हो गया। तो ये पॉजिटिव प्रैक्टिकल साकार में अप्रोच है कि हम हर एक घंटे चलते फिरते, बैठ करके तो हम कर ही रहे हैं, चलते फिरते। और हम तो वहाँ किचन में ये अभ्यास कराते थे कि वहाँ से थाली उठाया और तवे तक पहुँचा, इस बीच में बाबा की याद रहती थी और थाली रखते रखते भूल जाती थी और हम वापस आ जाते थे, आने के बाद पता चलता अरे। यदि हम आत्मस्मरण को बढ़ाते थे तो धीरे धीरे भूलने की प्रक्रिया मिनट तक सिमट गई थी, और मिनट तक क्या, आधे मिनट तक सिमट गई थी, यानी आधा मिनट भूल जाता था, आधे मिनट के बाद ही याद आ जाती थी। अभी जैसे हम लक्ष्य रखते तो घंटा भर भूले रहते हैं, यदि आप उस लक्ष्य को थोड़ा सिंक्रोनाइज करें, छोटा छोटा करते जाएं, तो आप देखेंगे आप 3 मिनट के बाद फिर से स्मरण की तरफ आ जाते हैं, 2 मिनट के बाद फिर से आत्मस्मरण की तरफ आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल इस चीज़ का आज सारा दिन एक अभ्यास करें, जो वॉकिंग माइंडफुलनेस जिसको अभी आप सुन रहे थे सरलता से सहजता से, तो चलते फिरते यानी कर्म करते भी हम कैसे एक एक अभ्यास को लें और उसके प्रति जागृत रहे। लेकिन भूल जाएंगे लेकिन क्रम यही होगा, भूलेंगे फिर याद आएगी। इसके बीच में खुशी मनाने की बात है, इसके बीच में कुछ रिपेंट करने की बात नहीं है, या इसके बीच में ये नहीं करने की बात है कि अरे मेरा तो सामर्थ्य नहीं है, अभी होता ही नहीं है। यदि आप 1 घंटे में 5 मिनट भी याद करते हैं तो खुशी मनाएं, क्योंकि 5 मिनट भी नहीं होता था, 5 मिनट की तो कमाई हुई, ये भी नहीं होता था, नहीं प्रैक्टिकल ध्यान नहीं देते थे तो घंटा 2 घंटा भी गुजर जाता था, 5 मिनट तो हुआ, हम ये सोते रहे तो 55 मिनट क्यों नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है, हम लोग तवे पर रोटी सेकते अभ्यास करते थे तो कभी कभी हम इतना तक भी लिखते थे 1 घंटा में 55 मिनट, ये भी हो सकता है। तो यदि हम इस अभ्यास क्रम को बढ़ाते हैं तो आप देखिए कल क्या रिजल्ट आती है आपको। ओम शांति।
प्रभु से